بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بات ہماری چھٹے درس میں ہے جو حدود و تعریف کے معنی میں ہے. کل آپ خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو کلیات خمس کی بحث ہے یہ اہمیت کی حامل ہے, اس لیے چونکہ جب تعریف کے باب میں داخل ہوں گے تو یہی عناوین اور اصطلاحات استعمال ہونی ہیں. پہلے معلوم ہو کہ مثلا کلیات خمس سے کیا مراد ہے, تب جا کر انسان صحیح طریقے سے تعریف کو اور اس کی اقسام کو جو ہے وہ درک کر سکے گا. اس میں پھر بتایا تھا کہ اگر کوئی چیز کسی ذات کی تمام حقیقت کو بیان کر رہی ہو اس کو نو کہتے ہیں. مثلا آپ کی اور میری تمام حقیقت انسان ہونا ہے, بس انسان ہمارے لیے نو ہے. اور اگر وہ جزء مشترک ہو, جس کو جزء عام کہا تھا, اور جزء ذات ہو لیکن جزء مشترک ہو, کیونکہ انسان اور غیر انسان دونوں کو شامل ہے, وہ مثلا حیوان جیسے ہے, یہ انسان کو بھی شامل ہے اور غیر انسان کو بھی شامل ہے, اس وجہ سے اس کو جزء ذاتی مشترک کہا جاتا ہے, جزء مشترک. اگر جزء مشترک کو بیان کر رہی ہو کوئی چیز تو اس کو جنس کہتے ہیں. جنس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں, ایک وہ ذات کا جز ہوتی ہے اور دوسری مشترک ہوتی ہے کہ انسان و غیر انسان کو شامل ہے مثلا. اور جزء مختص جو کہ جزء ذات ہو اور مختص ہو اسے فصل کہتے ہیں, جیسا کہ ناطق ہمارے لیے فصل ہے. اور اگر جز خارج ذات ہو اور مشترک ہو اس کو عرض عام کہیں گے. اور جو جز کی تعبیر بھی استعمال یہاں پر نہیں کر سکتے, جز کی جب بھی تعبیر استعمال کرتے ہیں وہ جز ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے. بہرحال یہ کہیں گے کہ مثلا یہاں پر بعض جو احوال ہیں وہ انسان کے لیے مختص ہیں اور وہ مختص احوال خارج ذات ہیں, تو وہ عرض خاص کہلائے گا. آج پھر وارد ہو جاتے ہیں, اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ فیفریوس نے مقدمے کے طور پر اس میں اضافہ کیا تھا, اسی وجہ سے کہ یہاں پر جب تعریف میں وارد ہوتے ہیں تو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں, تو فیفریوس نے پہلے آ کر اس کو کلیات خمس کے عنوان سے ایک مقدمے کے طور پر اضافہ کر دیا, تاکہ یہاں پر طالب علم اصطلاحات سے آگاہ ہو جائے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ باب تعریف میں وارد ہوگا تو مطلب سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اب ہم وارد ہوتے ہیں باب تعریف میں, اور کہا تھا کہ علم منطق کا جو موضوع ہے وہ معرف اور حجت ہے. معرف اور حجت بھی کس اعتبار سے موضوع ہے, یعنی معرف موضوع علم منطق ہے اس اعتبار سے کہ آپ ایک مجہول تصوری کو معلوم تصوری میں بدلنا چاہتے ہیں. مجہول تصوری کیا کہلائے گا؟ مثلا تصور کی تو تعریف سمجھ میں آ گئی ہے کہ آپ بغیر حکم کے اگر کسی چیز کو درک کریں گے وہ تصور کہلائے گا. مثلا آپ پنکھے کا تصور رکھتے ہیں, اس پر کوئی حکم نہیں لگاتے کہ پنکھا موجود ہے, سفید ہے, یہ اس قسم کا حکم نہیں لگایا, فقط آپ نے پنکھے کو درک کیا ہوا ہے, اس کو کہیں گے کہ یہ معلوم تصوری ہے آپ کا, کیونکہ آپ پنکھے کا تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. مثلا آپ جب تک مجھے نہیں ملے تھے آپ میرے بارے میں مجہول تصوری میں مبتلا تھے, کیونکہ میرا تصور آپ کے ذہن میں اصلاً موجود نہیں تھا, لیکن جب ملاقات ہوئی ہماری تو آپ نے ایک درک کیا, مجھے درک کیا, میرا تصور آپ کے ذہن کے اندر آیا, تصویر ذہن کے اندر آئی ہے, اب میں آپ کے لیے معلوم تصوری بنا چونکہ آپ نے درک کیا, تصور کیا. تو باب تعریف میں بھی یہی کام ہوتا ہے. باب تعریف میں جو چیز مجہول تصوری ہوتی ہے, یعنی جس کے بارے میں ابھی آپ نے اصلاً معلومات حاصل نہیں کی ہیں, یا آپ یعنی آپ یوں کہیں کہ آپ کو کتنی چیزوں کا ابھی علم ہی نہیں ہے, اصلاً آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے ان کو, تو وہ آپ کے لیے مجہول تصوری ہیں. ان کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, معلوم تصوری میں بدلنا ہے, یعنی اس تصور مجہول کو معلوم کے اندر بدلنا ہے. اس کی کیا روش ہے وہ باب تعریف ہمیں سکھاتا ہے. باب تعریف ہمیں بتائے گا کہ ایک مجہول چیز کو معلوم کیسے بنانا ہے تصور میں. कैसे बनाना है वो तारीफ के जरिए होता है। मसलन शहीद मुतहरी यहाँ पर फरमाते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो सवालात मौजूद हैं कि जो किए जाते हैं। तकरीबन 9 किस्म के सवालात इन्होंने यहाँ पर जिक्र किए हैं, लेकिन बाबे तारीफ के साथ जो है वो खास हैं। वो चीजें कि जो मसलन मसलन आप पंखे के बारे में पूछेंगे, जब आप पंखे को देखते हैं, अभी पंखे की हकीकत आपके लिए वाजे नहीं है, ठीक है। जब आपके लिए पंखे की हकीकत वाजे नहीं है, ये आपके लिए मझूले तसव्वुरी है। पहली मिसाल जो आपको दी एक सादा मिसाल दी है उसको, कि आपको पंखा जेन में आ गया तो मझूले मालूम है, तसव्वुरी बदल जाएगा। अभी थोड़ा दकीकतर वारिद हूँ। मतलब अभी आपने पंखे को देख तो लिया है, लेकिन पंखे की हकीकत से आगाह नहीं है, पंखे की वाकईत व हकीकत क्या है। तो आप जब सवाल करते हैं कि पंखे की हकीकत क्या है, तो उसके जवाब में जो चीज आएगी वो पंखे की हकीकत होगी, और उसको जानने के बाद आप कहेंगे हाँ मैं अब पंखे को जान गया।
पंखे की हकीकत तो तस्दीक में आ जाएगी ना,
ना,
तस्वुर में नहीं
वो
होगी।
तस्दीक तब आएगी कि जब आप इसके बारे में हुक्म लगा देंगे। मतलब आप कहेंगे कि पंखा वजूद रखता है, पंखा सफेद है, पंखा तुलानी है, ये तस्दीक में चला जाएगा। अभी ये है कि आपको पंखे का पता है कि पंखे नाम की कोई हकीकत है, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि पंखा वजूद रखता है या नहीं रखता, पंखा सफेद है या नहीं है, तुलानी है या तुलानी नहीं है। अभी फकत ये कि पंखे नाम की हकीकत से मैं आशना हुआ हूं, इसकी हकीकत क्या है, दुरुस्त है। ये मरहले बाय मरहले इस तरीके से होगा। अभी चूंकि तस्दीक इसलिए नजर आ रही है चूंकि पंखा हमने देखा हुआ है, ठीक है, इस एतबार से। या मसलन मैं मिसाल आपको देता हूं, मसलन चुड़ैल का मफहूम जो है वो हर इंसान के जेहन में है, खुसूसन पाकिस्तानियों के अंदर। अब आप अगर इसकी हकीकत को जानेंगे, अब ये मझूले तसव्वुरी है, चुड़ैल का लफ्ज तो जेहन के अंदर है लेकिन किसी को उसकी हकीकत के बारे में इल्म नहीं, वाकईयत उसकी कोई नहीं जानता कि चुड़ैल किस चीज का नाम है असलन। अभी ये बात नहीं हो रही है कि चुड़ैल जो है वो जो फलानी फलानी हकीकत रखती है वो खारिज में वजूद भी रखती है या नहीं रखती है, अभी ये बात नहीं हो रही है। अभी ये बात हो रही है कि ये जो मेरे जहन में या किसी ने मेरे सामने जिक्र किया है चुड़ैल का, तो आया ये इसकी हकीकत क्या है। वो जो हकीकत आपको बयान की जाए अभी आपके लिए मजहूले तसव्वुरी है, क्योंकि आपको फकत लफ्ज चुड़ैल पता है, आपको अभी हकीकत चुड़ैल नहीं पता। जब वो पता चल जाएगी वो मजहूले वो मालूम तसव्वुरी में बदल जाएगी। जब वो मालूम तसव्वुरी में बदल जाएगी फिर अगला सवाल आएगा कि हाँ अब इस किस्म की हकीकत खारिज में है भी या नहीं है, वो फिर बाबे तस्दीकात में चला जाएगा। मदरस है, लिहाजा यही इसी तरह जैसे मिसाल आसानी के लिए मिसाल देते हैं। मतलब अभी इंसान के मफहूम से आशना है आप, लेकिन उसकी हकीकत से आशना नहीं है कि इंसान की हकीकत क्या है, लिहाजा ये इंसान आपके लिए मजबूले तसव्वुरी है। और कितनी चीजें आप खुद जानते हैं लेकिन हकीकत से आगाह नहीं है। जब पूछा जाए ये क्या चीज है, आप कहते हैं मुझे नहीं मालूम। ये कहना कि मुझे नहीं मालूम, इसका मतलब है मजबूले तसव्वुरी में आप मुबतला हैं उसकी निस्बत। तो लिहाजा ये मजूले बाबे तारीफ में ये बात सिखाई जाती है कि एक मजहूले तसव्वुरी को मालूमे तसव्वुरी में कैसे बदलना है, और मजहूले तसव्वुरी मालूमे तसव्वुरी में कैसे बदलेगी जब तारीफ करेंगे आप उसकी। तारीफ कैसे करनी है इसके कवायद जो हैं वो इल्म मंतिक बताया गया आपको। बस बाबे तारीफ का जो मकसद है मजहूले तसव्वुरी को मालूमे तसव्वुरी में बदलना है, और कैसे बदलना है इसके कवायद व जवाबित इल्म मंतिक बाबे तारीफ में बयान करता है। बस ये मुआरिफ मौजू है, मुआरिफ मौजू इस एतबार से है कि ये हमें मजहूले तसव्वुरी से मालूमे तसव्वुरी में बदलता है, इस एतबार से मुआरिफ हुज्जत है, वाइल मुतलका मुआरिफ जो है वो हुज्जत नहीं है।
मोरे मुझे देने क्या
यानी मुआरिफ के जो हमें मालूम तसव्वुरी से ना मजहूले तसव्वुरी से मालूम तसव्वुरी तक पहुंचाए वो हुज्जत है।
मुझे दलील
दलील यानी हुज्जत वो मौजू है, حجت ایسی زبان پہ آ رہا ہے، یعنی معرف اس اعتبار سے کہ وہ ہمیں مجہول تصوری سے معلوم تصوری تک پہنچاتا ہے، موضوع علم منطق ہے. اور حجت جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ وہ ہمیں مجہول تصدیقی سے معلوم تصدیقی تک پہنچا دے، اس اعتبار سے وہ موضوع علم منطق ہے. بارہ، ابھی اس درس میں ہماری بات جو ہے وہ باب تعریف کے اندر چل رہی ہے. باب تعریف کے اندر پھر ایک قاعدہ اور ضابطہ جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو معلوم مجہول تصوری کو اگر آپ معلوم تصوری میں بدلنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ ایسی تعریف کریں اس کی کہ جو جامع اور مانع ہو. جامع کیسے ہو؟ جامع اس اعتبار سے ہو کہ اس حقیقت کے جتنے بھی افراد ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جائیں. تعریف ایسی ہونی چاہیے، مثلا اگر کہا جائے کہ انسان کی حقیقت مجھے معلوم نہیں ہے، اس کے بارے میں مجھے بتاؤ، تو انسان کی حقیقت کو اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ جتنے بھی افراد انسان کے مصداق ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں. اگر ایسی تعریف کر دی جائے کہ جو بعض افراد کو تو شامل ہو لیکن بعض افراد کو شامل نہ ہو، تو وہ کبھی بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے آپ کو مجہول سے معلوم تصوری میں بدلا ہے نا، آپ ابھی بھی مجہول تصوری میں باقی ہیں، کیونکہ انسان کی پوری حقیقت کو نہیں جان سکے آپ. آپ فقط ایک مثلا کوئی آگے تعریف کر دیتا ہے کہ انسان ایسی ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے افراد سفید ہوتے ہیں مثلا، ٹھیک ہے سفید والوں کو تو آپ نہیں جان، لیکن باقیوں کو آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ لہذا حقیقت ایسی بیان کریں کہ جو تمام افراد کو شامل ہو، جامع ہونی چاہیے. دوسری قید جو یہاں پر پائی جاتی ہے وہ یہ کہ مانع ہونا چاہیے. مانع کیا مراد؟ یعنی کوئی غیر بھی اس کے اندر داخل نہ ہو. انسان کی اس طریقے سے تعریف کریں گے تمام افراد انسان کو شامل ہو، اور جو انسان کے افراد نہیں ہیں وہ اس سے خارج ہو جائیں. مثلا جانور انسان کی تعریف میں داخل نہ ہو کہ آپ اس قسم کی تعریف، مثلا کوئی آگے تعریف کرتا ہے الانسانو حیوانن ماشی، انسان حیوان ہے اور چلنے والا ہے، اگر یہ تعریف کریں گے تو اس میں تو جانور بھی داخل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سارے انسان اس میں شامل ہیں، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ حیوان بھی ہے اور چلنے والا بھی ہے، تمام افراد شامل ہو گئے اس میں. لیکن اس تعریف کا نقص یہ ہے کہ اس کے اندر اور افراد بھی شامل ہو گئے جو کہ انسان کی تعریف میں شامل ہی نہیں ہے، انسانیت ان پر صدق ہی نہیں کرتی ہے، تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے. پس یہ تعریف غلط ہوگی، یہ آپ کو معلوم تصوری تک نہیں پہنچا رہی ہے. بس تعریف وہ آپ کو صحیح طریقے سے معلوم تصوری میں تک پہنچا سکتی ہے، آپ کے لیے ایک حقیقت کو صحیح طریقے سے اس وقت کشف کر سکتی ہے معلوم تصوری میں کہ جب تعریف جامع اور مانع ہونی چاہیے ہوگی. جب یہ تعریف ہوگی اس طریقے سے تو آپ ایک مجہول کو معلوم میں بدل سکتے
اچھا
ہیں.
ناطق سے کیا مراد ہے؟
ناطق یعنی درک کرنا، کلی کو درک کرنا. جیسے مثال دی تھی آپ کو شاید شروع میں کہ درک کرنے سے، درک کے کلی سے مراد یہ ہے، مثلا آپ اور میں اور بچہ، ٹھیک ہے مثلا لے لے، اور ایک جانور کا مثلا آپ لے لیں، مثلا میں اپنی مثال اور اپنی مثال ایک جانور کی مثال لے لیں. جانور جو ہے وہ بھی اپنی اولاد کی محبت کو در کرتا ہے، میں اور آپ بھی اپنی اولاد کی محبت کو در کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ جزئی کو در کر رہے ہیں، ماں کی محبت، اولاد کی محبت، دوست کی محبت، بھائی کی محبت، یہ جزئی مورد ہیں. اس کو حیوان بھی در کرتا ہے اور انسان بھی در کرتا ہے. لیکن خود محبت کیا چیز ہے؟ محبت کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو انسان تو درک کرتا ہے لیکن حیوان درک نہیں کرتا.
اچھا اب یہاں پہ اگر مثلا تو بچہ بھی پیدائشی بچہ بالکل پیدا ہوا ہے وہ ناطق نہیں ہے مثلا درک نہیں کر رہا.
ناطق کی صلاحیت ہے اس کے اندر. بچے کو اگر حیوان ناطق کہا جا رہا ہے اس کی صلاحیت کی وجہ سے کہا جا رہا ہے، پہلا بھی وہ ناطق نہیں ہے کیونکہ بچہ ابھی امور جزئیہ سے آشنا ہو رہا ہے.
مثلا وہ بھی نہیں ابھی پیدا ہوا ہے جسٹ.
ہاں پیدا ہوا جسٹ، यानी उसके ऊपर भी नातिक का सिद्ध किस लिए करते हैं, क्योंकि खुदा ने उसको नातिक बनने की सलाहियत देकर भेजा है, लेकिन हैमान में नातिक होने की सलाहियत ही नहीं है,
बिल्कुल है।
वो बिल्कुल वह है। हाँ
और जो दीवाना हो गया
उसमें भी सलाहियत है, यानी आरजी तौर पर दर की सलाहियत खत्म हो गई है क्योंकि दीवाना बन गया है, लेकिन अगर उस आरजे को खत्म कर दिया जाए तो खुद ब खुद नातिक बन जाएगा। लेकिन हैवान में इस किस्म कोई चीज नहीं है, हैवान में चाहे आप जो मर्जी करते रहे वो कुल्ली को दर्क नहीं करेगा। उसकी मिसाल क्या है, उसकी उसकी शाहिद हमारे पास क्या है कि इन हैवान कभी भी कुल्ली को दर्क नहीं करता। उसकी वजह यह है कि आप किसी भी हैवान को 1,000 साल पुरानी उसकी जिंदगी देखें और आज की जिंदगी देखें, एक जैसी है। शेर कई 1,000 साल पहले भी जंगल में रहकर उसी तरीके से जिंदगी गुजार रहा था, गोश्त पे गुजारा कर रहा था, पहाड़ों में रह रहा था, आज भी उसकी वही सूरत है, कोई तब्दीली नहीं आई है। लेकिन इंसान को देखें, इंसान जो कई 1,000 साल पुराना है उसको देखें और आज की इंसान को देखें, जमीन आसमान असल फर्क करता है, असल कोई ताल्लुक ही नजर नहीं आता उनकी तर्ज जिंदगी के अंदर, तरक्की नजर आती है। तो ये तरक्की कुल्लियात को दर्क करने की वजह से आई है। बस नातिक यानी कुल्ली को दर्क करना होता है और इंसान का ये खासा है। खूब ये एक मतलब इन्होंने यहां पर बयान किया कि जिसको वजात कर दिया। अब आकर यहां पर सवाल सवालात के अंदर ये चीज बयान करते हैं कि जब आप किसी मजहूल से मवाजे होते हैं तो चंद किस्म के सवाल आपके जहन में उठते हैं। मसलन अगर आपको हकीकत का नहीं पता होगा तो आप माहुआ के जरिए सवाल करेंगे। मसलन इंसान को तो जानते हैं लेकिन उसकी हकीकत से आगाह नहीं है। मसलन इंसान नाम को देख लिया, मसलन जैद को देख लिया आपने, अब इसकी हकीकत को नहीं जानते आप पूछते हैं माहुआ जैद, जैद क्या है, मां यानी माहुआ से क्या मुराद, यानी आप इसकी हकीकत जानना चाहते हैं। लिहाजा इसको कहते हैं मां माहुआ, यानी सवाल माहू कहते हैं माहुआ। लेकिन बाज औकात क्या है, आप हकीकत को जानते हैं, आपको पता है कि इंसान इंसान की हकीकत हैवान नातिक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये खारिज में मौजूद भी है या नहीं है, तो उस वक्त इसको हल हुआ के जरिए सवाल किया जाएगा। इसे कहा जाएगा कि हले जैद मौजूद, हल हुआ के साथ सवाल किया जाएगा। अगर क्या है, आपको उसके वजूद के बारे में भी इल्म है, उसकी हकीकत के बारे में भी इल्म है, लेकिन उसकी कैफियत के बारे में मौजूद नहीं है, कैफियत के बारे में इल्म नहीं है, तो उस वक्त कैफा से सवाल करेंगे। जैसे आप देखें इंसान जब किसी से मिलता है, अगर किसी के हालात से आगाह ना हो तो फिर वो पूछता है कैफल हाल मसलन। अब वो जानता है मौजूद है, हकीकत को जानता है, सब कुछ है, जिस चीज से हालत से अगर आगाह ना हो तो कैफ अलहाल से कैफ से सवाल किया जाता है। बहरहाल मतालिब वाजे हैं, सारों की तौजीह देने की जरूरत नहीं है। उसमें फिर अगर मकदार को आपने जानना हो तो कम से सवाल करेंगे, अगर आपने उसके मकान के बारे में सवाल करना हो तो ऐन से सवाल करेंगे, ऐन जैदुन जैद कहाँ है मसलन, सवाल ऐन से करेंगे। मता जमाने के बारे में सवाल करना चाहते हैं तो मता से सवाल करेंगे, ये चीज कब से है तो आप मता के जरिए सवाल करेंगे। अगर किसी की शख्स की शख्सी हकीकत को जानना चाहेंगे तो उस वक्त मन हुआ से सवाल करेंगे, मतलब इस तरीके से अय्यो के जरिए सवाल करेंगे। और अगर इल्लत इल्लत के बारे में जानना है तो लिमा के जरिए सवाल करेंगे, कि अगर आप कहते हैं कि आपको ये पता है कि मकनातीस लोहे को खींचता है लेकिन आपको उसकी इल्लत का नहीं पता, तो आप फिर लिमा से सवाल करेंगे, लिमा कानल मकनातीस हो मसलन जाजिब लिल हदीद, आप ये पूछेंगे क्यों ये मकनातीस जो है वो जाजिब है हदीद को, खींचता है अपनी तरफ। बस इल्लत के बारे में जब आपने सवाल करना है वो लेमा के जरिए करेंगे। बस कहते हैं कि आपके
के जरिए कब करेंगे,
अयोग आप मसलन पूछना चाहते हैं, आपके पास दो चीजें पड़ी हुई हैं, तो आप जिस हकीकत को जानते हैं उसके बारे में आप मुरद्दत हैं कौन सी है, तो आप वहां पूछेंगे कि अय्युहुम हाजा मसलन, ये यानी जो चीज मुझे पता है और इसके अंदर मौजूद है, इन दोनों में से वो कौन सी चीज है, वहां अय्यो के जरिए आप सवाल करेंगे।
और मन हुआ और माँ हुआ में क्या फर्क है?
माँ हुआ हकीकत के बारे में सवाल करता है, मन हुआ शख्स के बारे में सवाल है। मतलब आप इस शख्स के, मेरे सामने जो शख्स बैठा है, मैं इसको नहीं जानता, ये कौन है, कहाँ से आया है, मतलब इस जो भी मन हुआ के बारे में आप सवाल करते हैं, एक शख्सियत को पहचानने के लिए, वो कहेंगे आपका फुलाना नाम है, आप फुलाने के बेटे हैं, मतलब ये जो तारीफ होती है इसको मन हुआ कहते हैं। मतलब यानी शख्स के बारे में जानना मन हुआ है, लेकिन माँ हुआ कहती खुद हकीकत के बारे में जानना। मैं आपको जानना नहीं चाहता, मैं आपकी हकीकत को जानना चाहता हूं कि आपकी तमामुज्जात कौन सी चीज है, आप किस हकीकत के फर्द हैं, किस हकीकत के मिसदाक हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। दुरुस्त है?
मसलन अगर किसी गैर जानदार के बारे में सवाल हो
हाँ
तो उसके अंदर माँ हुआ आएगा, मतलब उसकी मैं हकीकत को नहीं जानना चाह रहा, खुद उस चीज को जानना चाह रहा हूँ मसलन
दुरुस्त
मिसाल
है,
के तौर
वहां माँ हो इस एतबार से आएगा क्योंकि जानदार नहीं है, लेकिन मुराद यही मन हुआ ही है। ये एक सवालिया, एक मरहला बनाया हुआ इल्म मंतिक ने, अब वहां पर चेंज हो सकता है, लेकिन मरहला यही वाला है, नाम रखा हुआ है हर मरहले का, ये मन हो का मरहला है, ये माहू का मरहला है, माहू हकीकत वाला है, खल्त ना हो वहां पर, माहू ये हकीकत के दरमियान और मन हुआ के दरमियान खल्त ना हो, गैर जानदार के अंदर मन हुआ का लफ्ज लगा दिया वहां पर, यानी अगर उसकी शख्सी को भी जानने होंगे मरहला मन हु होगा, मन हुआ। दुरुस्त है? चाहे आप उसमें माँ हुआ का ही सवाल कर लें उसके साथ, क्योंकि गैर जानदार नाव कहती है, चूंकि ये गैर जानदार है, माँ का लफ्ज लेकर आप, मन का ना लेकर, वो नाव कह रही है, लेकिन मंतिक कहती है ये मरहला मन हु है, लिहाजा इस एतबार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक मतलब जो है इन्होंने यहां पर बयान किया। खुद फिर एक मतलब यहां पर ये बयान करना चाहते हैं कि ये मतलब आपके जहन में होना चाहिए कि मंतिक का काम इन सब के बारे में जवाब देना नहीं है। मसलन अगर हमने ये बयान कर दिया कि आप किसी के बारे में अगर सवाल करना चाहते हैं तो हतमन इन्हीं में से किसी एक के जरिए सवाल करेंगे, या आप उसकी हकीकत से नाशना होंगे, या उसके वजूद से नाशना होंगे, या आप उसके मसलन ये नाशना होंगे, तो आपको मालूम करना है। तो अब अगला सवाल यह है कि इन तमाम सवालों के जवाब कौन देगा? कहते हैं कि मंतिक का काम नहीं, इन सब के जवाब उसी के साथ मरबूत उलूम देंगे। अगर आप किसी हकीकत को जानना चाहते हैं तो वो हकीकत किस इल्म के साथ मुर्तबित है वो बताएगा कि वो क्या है। मसलन फिजिक्स जिस्म के बारे में बात करता है तो जिस्म को किसने बयान करना है? फिजिक्स ने बयान करना है, मसलन वहां पर बयान करेगा। या जिस्म वजूद रखता है या नहीं रखता, फलसफे ने जवाब देना है, यानी हल हुआ का जवाब कौन देगा? फलसफा देगा, क्योंकि फलसफे में हल हुआ से सवाल होता है कि ये मौजूद है या मौजूद नहीं है, ये फलसफा इसके बारे में जवाब देगा। लेमा कौन जवाब देगा इसका? लेमा का जवाब जो है वो भी उसके इल्म के साथ जो है वो मुर्तबित। मतलब आपने पूछा लेमा कानल मगनदी सुम जाजमन लिल हदीद, तो ये कौन जवाब देगा इसका? वही जो इल्म मगनदीस की को जानता है, उसके बारे में तहकीक करता है, वो उसकी इल्लत बयान करेगा कि मगनदीस में कौन सी ऐसी चीज है कि जो लोहे को खींचती है अपनी तरफ। बस नतीजा निकला कि इल्म मंतिक हमें जवाब नहीं देता, जवाब कैसे देना है उसको हमें सिखाता है, उसके कवायद हमें बताता है। अगर कोई सवाल ये करता है, फिर इंसान, ये कहा जाता है कि इंसान की तारीफ इल्म मंतिक ने की हुई है हैवान नातिक, तो अगर सवालात का जवाब मंतिक ने नहीं देना था तो फिर इंसान की तारीफ क्यों गई है? माँ हुआ का तो जवाब दे दिया उसने, मा हुवल इंसान मसलन हैवान नातिक, फिर उसके जवाब में कहा गया। जवाब उसका यह है कि मंतिक ने जब कैफियत सिखानी थी, आपको बताना था कि किस तरीके से आपने जवाब देने हैं, तो किसी ना किसी को तो मिसाल के तौर पर लेकर आना था, ताकि आपको मिसाल के जरिए समझा सके कि किस तरीके से आपने जवाब देने हैं। उसमें मंतिक ने मेहवर किसको बनाया? इंसान को बनाया, इंसान को मेहवर बना के तारीफ की उसकी, ताकि आपको तत्बीक हो जाए, आपकी रिहर्सल हो जाए, मश्क हो जाए आपकी, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से एक हकीकत को एक हकीकत को मालूम में बदलना है। तो लिहाजा इंसान को मेहर बनाया, इंसान की तारीफ कर दी। वाला मंतिक का वजीफा जवाब देना नहीं है, बल्कि जवाब देना सिखाना है, कैसे जवाब देना है, ये मंतिक का काम है। एक मतलब ये इन्होंने जिक्र किया है, एक मतलब यहां पर यह जिक्र करते हैं कि ये जो हमने 9 सवाल बनाए हैं, इनमें से जो अहम तरीन सवाल हैं वो 3 हैं, और तमाम सवाल जो हैं वो खुलासा हो जाते हैं इसी के अंदर। तो लिहाजा इसी वजह से कहते हैं वो कौन से हैं, मा हल और लेमा। असासी तीन सवाल यही पूछे जाते हैं, बाकी फरियात हैं, कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते मसले में, लेकिन ये तीन सवाल लाजमी होते हैं। मा हुआ, हकीकत के बारे में हतमन कोई सवाल करेगा। हल हुआ, आया वो हकीकत मौजूद है या मौजूद है, नहीं है। लेमा क्यों मौजूद है, ये क्यों ऐसे काम कर रही है, ये तीन सवाल हर इंसान के जहन में हर हकीकत को देखकर उठते हैं जहन में। लिहाजा हाजी सब्जवारी से ये शरह मंजूमा से इबारत लेकर आते हैं, उस्सुल मतालिब सलासत इल्म सलासतुन उलेम। मतालिब कहा जाता है इन्हीं को जो सवालात हैं, उस्सुल मतालिब जो असासी तरीन मतालिब हैं वो तीन हैं कि उसको जाने, मतलब बा मतलब हल व मतलब उलेम, ये तीन मतालिब हैं कि लेमा अम्मा हल और लेमा, ये तीन चीजें पूछी जाती हैं। लिहाजा इसके बारे में फिर बहस करते हैं इल्म मंतिक के अंदर और इसकी तारीफ सिखाते हैं कैसे। खूब, अब मरा ये तो मुकदमा हमारा खत्म हो गया, अब कैसे हम बदलें उसको मजहूल तसव्वुरी को मालूम तसव्वुरी में। कहते हैं हाँ, अब ये यहां से मरहला शुरू हो जाता है। कहते हैं हमारे पास दो इस्तिलाहें मौजूद है, एक को हद कहते हैं और एक को रस्म कहते हैं। अगर आप किसी चीज की हकीकत को बयान करते हुए उसकी जातियात को इस्तेमाल करते हैं, जातियात से क्या मुराद है, जिन्स फसल और नौ, ये जातियात में से हैं। जातियात यानी जो ऐसे अज्जा के जो किसी हकीकत की जात को तश्कील दे रहे हों, जैसे मसलन पानी किससे तश्कील पाता है, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से। अब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जातियात आप हैं मसलन, क्योंकि अज्जाए जात बनते हैं उसके। तो इसी तरीके से अगर आप अज्जाए जात से तारीफ कर रहे हो एक हकीकत को, तो वो हद कहलाएगी, वो तारीफ हदी होगी, उसको हद का नाम देंगे। लेकिन अगर आप उसके खासे के जरिए तारीफ कर रहे होंगे तो वो क्या कहलाएगी, रस्म कहलाएगी। दुरुस्त है, ये इस तरीके से आकर हद और रस्म की जो है वो तारीफ है। आप फिर कहते हैं कि हद और रस्म दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, एक हद ताम है और हद नाकिस है। हद ताम क्या है, जिसमें आप तमाम हकीकत को बयान कर देते हैं, उसके जितने भी अज्जाए जातिया हैं उस तमाम के तमाम को आप बयान कर देते हैं, उसको कहते हैं कि हद ताम है। मतलब इंसान के जितने भी अज्जा हैं, मतलब इंसान के अज्जा क्या हैं, जौहर से आप शुरू करें, जौहर है, जिस्म है, जिस्में नामी है, हैवान है, फिर नातिक है, तमाम के तमाम अज्जा आप जिक्र कर दें, उसको कहते हैं हद ताम। और हैवान नातिक को भी हद ताम कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये मुख्तसर तारीफ है कि जो सब को शामिल है, क्योंकि हैवान अगर है तो बाकी सारी चीजें इसके अंदर शामिल है, नातिक अगर है तो तारीफ सारी फसूल इसके अंदर शामिल है। तो लिहाजा हैवान नातिक कहना तमाम हकीकत है उसकी, और लिहाजा ये हद ताम कहलाएगी। बस वो तारीफ के जिसके अंदर जिन्स और फसल, जिन्स करीब और फसल करीब दोनों इस्तेमाल हो जाएं, उसको हद ताम कहते हैं। दुरुस्त। और अगर फकत फसल हो, मतलब आप इंसान की तारीफ करें हैवान नातिक, हद ताम है। लेकिन अगर आप इंसान की तारीफ करें अल इंसान नातिकुन, तो ये हद नाकिस कहलाएगी, क्योंकि आपने एक जुज को फकत जिक्र किया है, ये हद ताम। बस हमारे पास हद ताम है और हद नाकिस है। अब आ जाते हैं रस्म के ऊपर। कहते हैं कि एक रस्म ताम है और एक रस्म नाकिस है। रस्म ताम के अंदर जिन से बईद इस्तेमाल होती है। अब चूंकि मंतिक ने शहीद मुताहरी ने अजनास की और फसूल की अकसाम बयान नहीं की हैं, मरातिब बयान नहीं किए हैं, इस वजह से मैंने भी अर्ज नहीं किया। आपने तो किताब में पढ़ा हुआ है, मसलन जिन एक जिन से करीब होती है, एक जिन से बईद होती है। मसलन इंसान, इंसान के करीब जो जिन्स होगी उसको जिन से करीब कहते हैं। मसलन हैवान इंसान के बिल्कुल करीब है, ये इसकी जिन से करीब है, लेकिन जिस्म जो है उसका मरहला हैवानियत के पहले आता है, बस ये इंसान से दूर है, इसको कहेंगे जिन से बईद। इस तरीके से, इसी तरीके से फसल की अकसाम है। तो आप कहते हैं कि रस्म ताम के अंदर पहला जुज जो होता है वो जिनसे बईद होता है, मसलन जिस्म, इंसान की आप तारीफ करना चाहते हैं आप कहते हैं अल इंसान और जिस्म, और दूसरा जुज उसका होता है खासा, मसलन जाहिकुन, जाहिक खासा है इंसान का, यानी ऐसी हालत व खसूसियत है इंसान की कि जो खारिज जात है लेकिन मुख्तस है जात के साथ। इसको कहेंगे कि ये क्या है, अरज़े खास है ना, रस्में ताम है।
खुद हद और रस्म की तारीफ क्या बनी थी?
हद जिसमें जातियात का इस्तेमाल हो, मसलन जैसे आप इंसान की तारीफ करते हैं हमारे नातिक के साथ, या मसलन इंसान की तारीफ करते हैं फकत नातिक के साथ, जातियात का मसलन जिन्स और फसल जातियात में से है, जिन्स जो है वो जुज़ मुश्तरक है, फसल जो है वो जुज़ मुख्तस है। अगर आप हैवान नातिक कह देंगे ये हद ताम बन जाएगी, अगर आप फकत नातिक कहेंगे तो ये हद नाकिस बन जाएगी, क्योंकि एक जुज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं आप।
खुद हद और रस्म क्या फर्क है
भाई? जिसमें अज्जा जातियात का इस्तेमाल होता हो वो हद कहलाएगी, और जिसमें खासे का या मसलन खसूसियत के जो खारिज जात हो, जात में शुमार ना होती हो, उसको रस्म का नाम देते हैं।
इसकी
भाई मसलन आप कहते इंसान जाहिकुन, मसलन जाहिक इंसान का खासा तो है लेकिन जात में शामिल नहीं है, जुज एजात नहीं है उसका, खारिज एजात है, लिहाजा ये रस्म बन जाएगा।
फिर आपने बताया कि हद ताम है और हद नाकिस है, और रस्म ताम है और
रस्म नाकिस है। हद ताम ही हो जाएगा जितने भी अज्जा हैं आप उसको जिक्र कर दें, इंसान किस किस से मिलकर बना है वो तमाम जिक्र करते हैं उसको हद ताम कहेंगे। अब उसको खुलासा करके लिखना चाहते हैं उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, वैसे हैवान नातिक फकत बयान कर दें, सारे को जिक्र करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तमाम की तमाम अजनास इसी हैवान के अंदर मौजूद है,
ये ताम हो जाएगी,
ये ताम हो जाएगी। और नाकिस क्या होगी? जिसमें आप फकत फसल जिक्र करते हैं, अल इंसान नातिकुन मसलन, और कुछ भी बयान नहीं करते, ये हद नाकिस है। तारीफ ठीक है लेकिन हद नाकिस है, यानी आप हकीकत से आशना तो हो रहे हैं लेकिन कामिल तौर पर आशना नहीं हुए, लिहाजा इसी वजह से इसको हद नाकिस का नाम दिया गया है। रस्म ताम में जिन से बईद और खासे का इस्तेमाल होता है, जैसे मसलन अल इंसान जिस्मुन जाहिक, और
ये ताम हो गई,
यह रस्म ताम हो गई, क्योंकि इसमें जो फसल है वो खासा बन रही है लिहाजा रस्म है, लेकिन रस्म ताम है चूंकि इसमें जिन से बईद से भी इस्तेफादा किया गया है इसलिए ये रस्म ताम है। और रस्म नाकिस है जिसमें फकत खासा से इस्तेफादा किया जाए, जैसे अल इंसान ज़ाहिकुन, फकत यही ये रस्म नाकिस बन जाएगी। वो अगर शेरवानी की किताब पढ़ी इसमें रस्म ताम की, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ, ठीक है। रस्म ताम जो है वो जिन्स और खासे के जरिए की जाती है, उसमें चाहे वो जिनसे वही जिन्स हैवान इस्तेमाल होता है, और रस्म नाकिस के अंदर फकत जो है वो खासा से इस्तेमाल होता है जैसे बयान किया। ठीक है, ये तकरीबन मतलब तारीफ के अंदर जो शहीद मुतहरी ने इस बात में जिक्र किया तो सारा बयान हो गया। इसके बाद ये बात हमारी आज यानी 6 दर्स के अंदर वो बाबे तसव्वुर हमारा खत्म हो गया है, अब तस्दीकात और कजाया की बात शुरू हो जाएगी यानी दर्स से आता हूँ।